ਸੂਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਵਲ ਧੇ ਮਾਤਰ ਕੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਧਾਤਰੀ ਮਾਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਧੇ ਜਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਕੀ ਵਹਿ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਜਬ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਬ ਉਸ ਕੋ ਜੈ ਬੋਧ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੇ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅਰਥਾਤ ਧਾਤਰੀ ਧੇ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਕਿੰਤੂ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਧਾਤਰੀ ਚਿੱਤ ਧੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਰਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੇ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਕਾ ਅਭਾਵ ਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹਿ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇ ਸਵਰੂਪ ਕਾ ਹੀ ਭਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਉਸ ਧਿਆਨ ਕੋ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਾਸਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਸੰਪਰਗਿਆਤ ਯੋਗ ਅਥਵਾ ਸਵੀਜ ਸਮਾਧੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਕਾ ਬੀਜ ਵਿਸ਼ੇ ਧੇ ਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਸੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਧੇ ਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਬ ਉਸ ਕੋ ਅਸੰਪਰਗਿਆਤ ਯੋਗ ਏਵਮ ਨਿਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਸੰਜਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤ੍ਰੈਮ ਤਿੰਨੋ ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਕਾ ਇਕੱਤਰ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੰਜਮ। ਤ੍ਰੈਮ ਤਿੰਨੋ ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਕਾ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੰਜਮ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਇਨ ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਸਮੁਦਾਏ ਏਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਹੋਣੇ ਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਂ ਪਰਵਰਤਕ ਉਸ ਕੋ ਸੰਜਮ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਵਹਿ ਸੰਜਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਤਿੰਨੋ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਸੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾ ਵਰਣਨ ਹੋਗਾ, ਅਤਾ ਪ੍ਰਤੇਕ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਲਿਖਣੇ ਸੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋ ਕੀ ਸੰਜਮ ਸੰਗਿਆ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਹੀ ਬੋਧ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗ ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਅੰਗੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਫਲ ਬਤਾਤੇ ਹਨ। ਤਜਾਤ ਉਹ ਸੰਜਮ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਾ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਕੇ ਜੈਸੇ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤਜ ਸੰਜਮ 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 ਜੈ ਅਭਿਆਸ ਕੇਵਲ ਸੇ ਸੰਜਮ ਕਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਜਮ ਜੈ ਹੈ। ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੇ ਹੋਣਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਧਾਰਣਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾ ਸਮੁਦਾਇ ਏਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਜਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਿਆਤ ਉਹ ਸੰਜਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਕੇ ਜੀਤਣੇ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਯੋਗੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਧਨੋ ਸੇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕੋ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸੀ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਭੂਤੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਖਿਆਤੀ ਭਾਵ ਕੈਬਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਦ ਮੈਂ ਰਤੰਬਰਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਮ ਸੇ ਵਰਣਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਔਰ ਵੀ ਉਜਵਲ ਹੋਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਖਿਆਤੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਸਿਆ ਭੂਮੀ ਸ਼ੋ ਬਿਨ ਯੋਗਾ सूत्र का भाव उस संयम का क्रम से भूमियों में चित भूमियों में बेनियोग करना चाहिए अर्थात लगाना चाहिए। अर्थ योगी को प्रथम चित्त की स्थूल वृत्ति वाली भूमि में संयम करना चाहिए। जब उसको जीत लिया जाए तो सूक्ष्म वृत्ति वाली चित्त की भूमि में संयम करना चाहिए अर्थात जैसी जैसी चित्त की वृत्ति होवे वितर्क अनुगत, इसके बाद विचारा अनुगत, फिर आनंद अनुगत, फिर असीमता अनुगत, उसी स्थिति में संयम करना चाहिए। इस तरह पहली भूमि को जीत कर आगे संयम करना चाहिए। कभी विवेक ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। नीची भूमि को जीते बिना ऊंची भूमि में संयम करने से ज्ञान रूपी फल नहीं मिलता। संयम ही चित्त के वशीकार एवं आत्मोन्नति का कारण है। वास्तव में धारणा ध्यान समाधि संयम के अंग हैं। चित्त को किसी देश में ठहराने को धारणा कहते हैं। चित्त देर तक ठहरा रहे तो वही ध्यान है। जब चित्त को ताता ते का ज्ञान न रहे वही समाधि है। सूत्र में बेन योग का अर्थ लगाना है। धारणा ध्यान समाधि अतरंग साधन है, यह आगे के सूत्र में बताते हैं। त्रयम अतरंग पूर्वे भया, सूत्र का भाव पहले की अपेक्षा तीनों धारणा ध्यान समाधि अतरंग है। अर्थ प्रथम पाद में वर्णन किए गए जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हैं, ये पांच बहिरंग साधन हैं। यद्यपि ये पांचों चित्त को निर्मल बनाकर संप्रज्ञात समाधि योग स्थिति बताते हैं, परंतु इनकी अपेक्षा धारणा ध्यान समाधि ये अतरंग साधन संप्रज्ञात समाधि के ही अंग हैं। अर्थात संप्रज्ञात समाधि की स्थिति और संयम की स्थिति समान होने से विशेष निकट हैं, तथा निर्वीर समाधि के तारणा ध्यान समाधि वहरंग हैं, ये अगले सूत्र में बताते हैं। तद्यपि वहरंग निर्वीयस्या, सूत्र का भाग कहते वह तारणा ध्यान समाधि भी निर्वीय समाधि के वहरंग साधन हैं। अर्थ जैसे पूर्वोक्त यम निजम आसन प्राणायाम प्रत्याहार संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है, उसी प्रकार धारणा ध्यान समाधि असंप्रज्ञात समाधि तो भाव निर्वीज समाधि के बहिरंग साधन है, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियां का अभाव रहता है। इन तीनों धारणा ध्यान समाधि की भी अपेक्षा नहीं रहती, अर्थात किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता। इसका अतरंग पर वैराग है, जो निर्वी समाधि के समान निरालंब निर्विशेष है। उसके दृढ़ होने पर असंप्रज्ञात योग और अवश्य प्राप्त होता है। गुणों का चंचल स्वभाव है, उनमें हर समय प्रणाम होता रहता है। गुणों का ही कार्य होने के कारण चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता, अतः निरोध समाधि के समय उसका कैसा प्रणाम होता है ये बताते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारियों, व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का अविभाव और आदर भावो दबना और प्रकट होना। निरोध क्षण चित जय जो निरोध काल में होने वाले चित का दोनों संस्कारों में अन्वय अनुगत अर्थात संबंध होना निरोध प्रणाम, यह निरोध प्रणाम कहा जाता है। व्युत्थान के संस्कार का दबना और निरोध के संस्कार का प्रकट होना यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का दोनों संस्कारों में अनुगत होना यह निरोध परिणाम कहा जाता है। और व्युत्थान क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इन तीनों पूर्व भूमियों को द्योतसान कहते हैं। व्यकाग्रता संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा द्योतसान है, निरोध असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से एकाग्रता संप्रज्ञात समाधि की द्योतसान रूप है। ऐसे व्युत्थान पद का अर्थ यहाँ एकाग्रता संप्रज्ञात समाधि जानना चाहिए। निरोध व्याकरण की इति से यदि नी पूर्वक उरुद धातु के आगे कारण से ते जन परते मन्ने तो निरोध शब्द का अर्थ पर्वैराग होता है तथा पर्वैराग का संस्कार निरोध शब्द का अर्थ होता है। और यदि भाव में परते मने तो निरोध शब्द का अर्थ रुकना है, इसलिए सूत्र पहले निरोध शब्द का अर्थ पर्वैराग है, दूसरे निरोध शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का उदय ना होना अर्थात सब व्यक्तियों का रुक जाना, तीसरे निरोध पद का अर्थ पर्वैराग संस्कार जानना चाहिए। अविभव क्षेपना कार्य करने की समर्थ से रहत निर्मल रूपी रहना, वर्तमान अवस्था से भूत अवस्था में जाना, प्रादुर्भाव अनागत अवस्था में वर्तमान काल में प्रकट होना, निरोध क्षण चित्त अन्वय चित्त अंत है, निरोध प्रणामा अन्वय अनुगत अर्थात चित्त निरोक्षण चित्त और अन्वय अनुगत निरोध प्रणामा निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध काल में होने वाले धर्मी चित्त का अपने धर्म व्युत्थान एकाग्रता अर्थात संप्रज्ञात समाधि और निरोध पर्वराग के संस्कारों के अनुगत होना। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना अथवा तथा निरोध अवस्था में संस्कारों का प्रकट हो जाना, प्रादुर्भाव का मतलब प्रकट, यह जो निरोध समय में चित्त का दोनों संस्कार से अनुगत संबंध होना है ये निरोध परिणाम है। निरोध का अर्थ सब व्यक्तियों का रुक जाना अर्थात पर्वैराग संस्कार है। परिणाम तीनों गुणों से उत्पन्न सब द्रव्यों में तीन प्रकार के होते हैं, धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम। जिस द्रव्य में यह परिणाम होते हैं उसको धर्मी तथा परिणाम को धर्म कहते हैं। जैसे कुमार मिट्टी को गूंद कर उससे अनेक प्रकार के काटादि बर्तन बनाता है, जहाँ मिट्टी धर्मी तथा काटादि बर्तन धर्म है। धर्मी मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन धर्म काटादि बदलते रहते हैं अर्थात बर्तन के आकार जो भिन्न प्रकार के बदलने से बने हैं, यही एक धर्म का दबना तथा दूसरे धर्म का प्रकट होना मिट्टी धर्मी का धर्म परित्याग कहता है। दूसरा लक्षण परिणाम उसको कहते हैं जैसे बर्तन का आकार पूर्व में मिट्टी में छिपा हुआ था, फिर काट बांध कर प्रकट हो गया, आगे जीर्ण होने पर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। इस बार मिट्टी में तीनों काल में काटादि वर्तमान रहने से काल भेद से गर्मी धर्मी मिट्टी में तीन लक्षण परिणाम होते हैं, भविष्य लक्षण परिणाम वर्तमान लक्षण परिणाम भूत लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम। काटादि के जीर्ण होने एवं किसी समय टूटने फूटने का समय ही अवस्था परिणाम है। चेत त्रिगुणात्मक होने से परिणामी है, उसमें हर समय व्यक्ति रूप परिणाम होता है। व्युत्थान के संस्कार क्षिप्त मूड प्रक्षिप्त चेत के धर्म है, इसलिए व्यक्तियों के अनुरोध होने पर इनका व्युत्थान के संस्कारों का मौजूद रहना स्वाभाविक है। इसी पर निरोध पर्वैराग के संस्कार भी चित्त के धर्म है। इन दोनों संस्कार रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना दूसरे का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म परिणाम है, अर्थात चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना निरोध प्रणाम है। अब निरोध संस्कार का फल बताते हैं। तस्या परिशांत वाहिता संस्कारात। सूत्र का अर्थ, निरोध संस्कार से चित्त की परिशांत प्रभाव वाली स्थिति होती है। व्याख्या, जब व्युत्थान के संस्कार रूप मल दब जाते हैं तथा निरोध अर्थात पर वैराग के संस्कार बढ़कर प्रबल हो जाते हैं, उस समय चित्त में निरोध संस्कारों की बाहुलता से निर्मल संस्कारों की निरोध धारा बहती रहती है। यही चित्त का परिशांत होना एवं एक रस बहना है। जैसे काष्ठ समाप्त होने पर अग्नि भी शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्ति के क्षीण होने पर संस्कार अंतर्बाधित हो जाते हैं। यही चित्त की प्रशांत वाहता स्थिति है और यही चित्त का अवस्था प्रणाम है। इस चित्त को प्रशांत अवस्था में निरोध संस्कारों को दृढ़ करना सिद्धि के देने वाला होगा, अन्यथा निरोध के संस्कार कम होते ही व्युत्थान के संस्कार दबा लेंगे और केवल स्थिति का लाभ कठिन हो जाएगा। निरोध परिणाम बताकर हम समाधि परिणाम दसेंगे। सर्व अर्थता एकाग्रतयो, सर्व अर्थता और एकाग्रता, किशय उदयो, किशय और उदय होना, चित्तस्या समाधि परिणामा, चित्त का समाधि अवस्था में प्रणाम है। चित्त धर्मी के सर्व स्वर्थतया सर्वा अर्थतया सर्वा अर्थतया अर्थता और एकाग्रता रूपी धर्मों का क्रम से नाश होना और प्रकट होना चित्त का समाधि अवस्था में प्रणाम है। सर्व अर्थतया सब विषयों की ओर जाना, यह शब्द चित्त की विक्षेप अवस्था के लिए जहाँ आया है। विक्षेप अवस्था में सात्वगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है और अपने कार्य करता है, इस कारण चित्त सारे विषयों की ओर जाता है। ये अवस्था समाधि के आरंभ काल में होती है। सभी विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का नाश हो जाना, एक ही ध्येय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था प्राप्त होना चित्त का समाधि परिणाम है। क्षय होना, उद्योग प्रकट होना ते व्याख्या, निरोध समाधि अस्त होने से पूर्व चित्त विक्षिप्त अवस्था में सभी विषयों की ओर दौड़ता है। यद्यपि सतोगुण की प्रधानता होती है तो भी रजोगुण के रहने से निरोध का अभाव रहता है। निरोध समाधि अस्त होने पर चित्त सब विषयों से रहित होकर एकाग्रता स्थिति प्राप्त करता है। इस तरह धर्मी चित्त के विक्षिप्त एकाग्रता दोनों ही धर्म हैं। जब चित्त के विक्षिप्त अवस्था के संस्कार दब जाते हैं और एकाग्रता के धर्म प्रकट होते हैं, वही संप्रज्ञात समाधि काल में होने वाला समाधि परिणाम है, अर्थात निर्वर्तक एवं निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ते मात्र का ही ज्ञान रहता है। चित्त को निज स्वरूप ही स्मरण नहीं रहता, अतः चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्रता में होना समाधि का परिणाम है। निरोध परिणाम वह है कि जब असंप्रज्ञात में निरोध संस्कारों के प्रादुर्भाव से एकाग्रता के संस्कार दब जाते हैं, समाधि परिणाम में व्युत्थान के संस्कारों का क्षय एवं एकाग्रता का उदय होना है और यही इनमें भेद है। चित्त की परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम बताते हैं। तथा पुनः शांत उदतो पुल परत्यो चेतस्या चेतस्या एकाग्रता प्रणाम तथा पुनः तब फिर शांत उदय तो शांति और उदय हुई पुल परत्यो समान दृतियां चेतस्या एकाग्रता प्रणाम चेत का एकाग्र प्रणाम है। तथा इसके बाद फिर जब शांत उदय हुई दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं तब चित्त का एकाग्र प्रणाम है। अर्थ समाधि प्रणाम के निरंतर अभ्यास से जब चित्त का विक्षेप शांत हो जाता है और उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है उसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति एक सी हो जाती है, यही चित्त का एकाग्रता परिणाम है। यद्यपि चित्त की वृत्तियां इस अवस्था में भी बदलती है परंतु जैसे विक्षेप में थी वैसी नहीं रहती। समाहत चित्त में जैसी वृत्ति दबती है वैसी उदय होती रहती है। समाधि परिणाम में संप्रज्ञात समाधि से पहले चित्त की शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्तियां का भेद होता है, किंतु जब एकाग्रता परिणाम होता है तब शांत उदय वृत्तियों का भेद मिट जाता है और चित्त की परिपक्व स्थिति हो जाती है। चित्त के समान ही भूत इंद्रियों के परिणाम कहते हैं। एतेन इससे ही चित्त के परिणाम ही भूत इंद्रियेषु भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्मपरणा और विख्याता व्याख्याता धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम व्याख्यान किए हुए जानने चाहिए, व्याख्या किए गए जानने चाहिए। इसी तरह चित्त परिणाम के समान पंच भूतों एवं इंद्रियों के धर्म प्रणाम लक्षण प्रणाम तथा अवस्था प्रणाम जानना चाहिए। व्याख्या धर्म प्रणाम वह होता है जब धर्मी पहले धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की प्राप्ति करता है, जैसे चित्त में धर्म प्रणाम जो इसी पाद में नवम सूत्र में कहा है, व्युत्थान के संस्कारों का दबना तथा निरोध संस्कारों का प्रकट होना चित्त का धर्म प्रणाम है। ग्यारहवें सूत्र में जो समाधि प्रणाम कहा उस समय चित्त के सर्व देशीय धर्म का दबना तथा एकाग्रता धर्म का प्रकट होना धर्मी चित्त का धर्म प्रणाम है। इसी तरह भूतों में धर्म प्रणाम समझना चाहिए, जैसे गूंधी हुई मिट्टी के पिंड से काट रूपी मिट्टी का हो जाना धर्मी मिट्टी का धर्म प्रणाम है। इंद्रियों का धर्म प्रणाम वह है जैसे नेत्र धर्मी को अपने धर्म नील पीत आदि में एक रूप को छोड़ दूसरे का ज्ञान होता है। लक्षण प्रणाम काल प्रणाम को ही कहते हैं, ये तीन भेद वाला भविष्य वर्तमान भूतकालों से होता है। घट का आकार प्रकट होने से पहले धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था, जब तक प्रकट नहीं हुआ था तब तक अनागत भविष्य। लक्षण परिणाम एवं घट बनकर वर्तमान लक्षण परिणाम जब टूट कर मिट्टी में मिल गया तब अतीत लक्षण परिणाम होता है। इसी प्रकार धर्मी नेत्र के धर्म नील पीत आदि के ज्ञान प्रकट होने से पूर्व भविष्य काल में छिपा रहता रहना उसका अनागत लक्षण परिणाम है। भविष्य काल से वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लक्षण परिणाम है। पुनः वर्तमान से अतीत मार्ग से छिप जाना अतीत लक्षण परिणाम है। अनागत अगे अवस्था परिणाम उसे कहते हैं जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नवीनता से जीर्ण अवस्था पुरानापन आता है, यह हर समय बदलता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। जैसे बालक से युवक तथा युवक के वृद्ध हो जाना एक दिन में नहीं हो सकता, वैसे ही अवस्था का परिणाम हर समय होता रहता है। दशमें सूत्र में कही हुई निरोध समाधि के भंग तक जो निरोध संस्कार हर क्षण दृढ़ होकर अंत में दुर्बल होते हुए पर शांत प्रवाही हो जाते हैं, यह उसका अवस्था प्रणाम है। इसी प्रकार पंच भूतों पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और इंद्रियों में धर्म लक्षण अवस्था प्रणामी को जानना चाहिए। अब धर्मी का रूप बताते हैं। शांत तत्तर उन प्रणामों के शांत अतीत उद्दत वर्तमान अभ्य प्रदेश भविष्यत धर्म अनुपाती धर्म से रहने वाला धर्मी धर्मी है। उन परिणामों के अतीत वर्तमान भविष्य धर्मों से अनुगत धर्मी तत्तर उन परिणामों के शांत अतीत हो गया ते उद्दत उद्दत वर्तमान अभ्यदेश भविष्यति धर्म अनुपाती धर्म से रहने वाला वो धर्मी है। सूत्र अर्थ शांत अतीत उद्दत वर्तमान अबे अभ्यपदेश भविष्यति अर्थात अतीत वर्तमान भविष्य धर्मों में जो व्यापक रहता है आधार रूप से विद्यमान रहता है वह धर्मी है। जैसे मिट्टी द्रव धर्मी है और गोले वर्तमान तथा बर्तनों के टुकड़े भिन्न भिन्न आकार के हो चुके हैं तथा जो होंगे उसके धर्म है। धर्मी समान रूप द्रव अनेकों विशेष रूपी धर्मों में व्यापत है व्यापत है। आव्यपदेश शांतो शांत उद्दता व्यपदेश धर्म अनुपाती धर्म और धर्मी समान रूप या द्रव अनेकों विशेष रूप धर्मों में व्याप्त है। उसके तीन भेद इस प्रकार हैं। पहला शांत शांत धर्म वे हैं जो अपना अपना व्यापार करके भूतकाल में चले गए, जैसे काट टूट कर मिट्टी के में वर्तमान से अतीत धर्म में लीन हो गया। उद्दत दूसरा उद्दत धर्म वे है जो अनागत काल को छोड़कर वर्तकाल में अपना व्यापार कर रहे हैं, जैसे काट मिट्टी में छिपा हुआ रूप था अब वर्तमान में प्रगट रूप काट धर्म है। अव्यक्त देश है जो अनागत भविष्य में शक्ति रूप से स्थिति हुए व्यवहार में ना लाए जा सकें तथा ना वह कहने में आ सकें, जैसे मिट्टी में बर्तन प्रकट होने से पहले शक्ति रूप में छिपे रहते हैं, इन्हीं को अनागत या आने वाला कहते हैं। इस प्रकार शांत उद्दत अव्यक्त देश धर्म में जो व्याप्त रहता है वही धर्मी है। एक ही धर्मी के अनेक परिणाम किस तरह होते हैं वे अगले सूत्र में बताते हैं। क्रम अन्यत्र क्रम अन्त्वम क्रम का भेद प्रणाम अन्यत्वे अन्यत्वे प्रणामों के भेद में हेतु हेतु है। कर्मों का भेद प्रणाम के भेद से हेतु है। क्रम अन्त्वम कर्म का भेद प्रणाम से अन्त्वे कर्मों का भेद प्रणाम के भेद से भेद में कारण है। व्याख्या एक द्रव में अनेकों क्रम से अनेकों परिणाम होते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी एक द्रव का एक क्रम से जो परिणाम होता है दूसरे क्रम से उससे भिन्न परिणाम होता है, तीसरे क्रम से तीसरा परिणाम होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनता है तो पहले कपास के बिनौले आगकर फिर धोनकर ऊनी बनाकर सूत तैयार करके ताना बना करके अंत में वस्त्र बनेगा। इस क्रम से कपास का वस्त्र रूप में बदल जाना ही परिणाम है। जब कपास से बत्ती बनानी है तो बनौले निकालकर कुछ फैलाकर बट देने से बत्ती बन जाएगी। यदि सूत की रस्सी बनानी है तो सूतों का तीन गुना कर बट देने से रस्सी बन जाएगी। इस प्रकार वस्त्र बत्ती तथा रस्सी बनने में क्रम का भेद करने से परिणामों में भी भेद रहा। अर्थात क्रम भेद से कपास के वस्त्र बत्ती रस्सी के परिणाम हुए। इसी प्रकार अन्य वस्तु में भी जानना चाहिए। जिस तरह बाहर के पदार्थों में अनेक धर्म परिणाम है उसी प्रकार चित्त में भी अनेक प्रकार के धर्म परिणाम है। चित्त के दो धर्म हैं, परिदृश्य अपरिदृश्य। पहला परिदृश्य धर्म प्रमाण विपर्जय विकल्प निंद्रा स्मृति राग द्वेष आदि चित्त की वृत्तियां जो प्रत्यक्ष रूप हैं, ते अपरिदृष्टि धर्म निरोध आदि धर्म जिनका ज्ञान शास्त्र एवं और अनुदान से होता है लगाने से, यही अप्रत्यक्ष अपरिदृष्टि सात प्रकार के हैं। निरोध धर्म संस्कारा परिणामवत जीवन चेष्टा शक्ति चेतस्य धर्म दर्शन वर्जिता। निरोध धर्म संस्कार परिणाम जीवन चेष्टा शक्ति यह चित्त के दर्शन परोक्ष धर्म है। इन सातों का ज्ञान शास्त्र द्वारा अनुमान से होता है। पहले जो धारणा ध्यान समाधि कह चुके हैं उसकी इस ते वस्तु में सिद्धि कर लेने पर उसका क्या फल प्राप्त होता है इसका वर्णन भूति पाद की समाप्ति तक किया जाएगा। इनको ही योग भूति कहते हैं। साधक अपने कल्याण के लिए जो उत्तम मालूम हो उसी का अनुशीलन करे भाव चिंतन करे। अब संयम का फल बताते हैं। परिणाम त्रय संयमात तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत अनागत ज्ञानम भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। सूत्रधार तीनों परिणामों धर्म लक्षण अवस्था में संयम करने से अतीत का अनागत भूत भविष्यत का ज्ञान होता है। पहला हम बता चुके हैं कि संसार के समस्त पदार्थ धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम के अंतर्गत रहते हैं। साधक इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम धारणा ध्यान समाधि करता है तो उनका साक्षात होने पर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। अर्थात योगी क्रम परिणाम को समझ जाता है किस किस अवस्था में होकर यह वस्तु किस रूप में पहुंच चुकी है एवं आगे इसका क्या रूप होगा और कितने समय में होगा। जब योगी को समय से आगे पीछे की बातों का ज्ञान हो जाता है तो किसी प्रकार का विघ्न आने वाला हो उसका निवारण भी उचित उपायों से कर सकता है। अथवा तीनों परिणामों में संयम के द्वारा रजोगुण तमोगुण दूर होकर सतोगुण का प्रकाश होने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। अब दूसरी विभूति कहते हैं शब्द अर्थ प्रत्यानाम शब्द अर्थ और ज्ञान के इतर इतर अध्यासात परस्पर के अध्यास से शंकर अभेद पासना होता है। तत् पर विभाग संजमात उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत सर्व प्राणियों से रुत ज्ञानम शब्द का ज्ञान होता है। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों का जो एक में दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है उनके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या ये है शब्द जीव जिह्वा से कहा जाता है कानों से सुना जाता है और कहने वाले की वाणी में रहता है। अर्थ शब्द में जाना जाता है जैसे गो गोशाला आदि परते ज्ञान चित्त की वृत्ति है जो शब्द गो एवं अर्थ गो का ज्ञान करती है। इस पर शब्द अर्थ ज्ञान तीनों अलग अलग हैं क्योंकि शब्द वक्ता की जिह्वा में अर्थ गोशाला में ज्ञान श्रोता के मन में रहता है परंतु तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है अर्थात तीनों मिले हुए मालूम होते हैं। योगी को संयम अभ्यास करने से समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है इसलिए शब्द अर्थ ज्ञान विभाग में संयम करने से सब प्राणियों की बोली को जान लेता है। अब अन्न सिद्धि बताते हैं संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञान संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या ये है मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है एवं इंद्रियों द्वारा जो अनुभव करता है उस सब के संस्कार संचित होकर बीज रूप से अंतःकरण में रहते हैं। वे संस्कार दो प्रकार के होते हैं एक वासना रूप जो स्मृति के कारण है दूसरे धर्म धर्म रूप जो जाति आजू भोग और उनके सुख दुख के कारण है। ये दोनों प्रकार के संस्कार अनेक जन्मों से इकट्ठे होते आ रहे हैं। ये प्रणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म की पंक्ति अपरिदृष्टि चित्त के धर्म है। उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जिस देश और जिस काल और जिन निमित्तों से बेसंस्कार बने हैं सब का स्मरण हो जाता है। जैसे अपने संस्कारों को संयम कर प्रत्यक्ष कर लेने पर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है वैसे ही दूसरे पुरुषों के संस्कारों में संयम कर प्रत्यक्ष कर लेने से उनके पूर्व जन्म ज्ञान हो जाता है। यही बात आगे कहते हैं प्रत्यस्या परचित ज्ञानम सूत्र का भाव है अन्य पुरुष के चित्त वृत्ति के साक्षात करने से दूसरे की चित्त वृत्ति मात्र का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या ये है योगी को अपने जन्म अंतरों का ज्ञान होने पर उसको यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि यदि वह दूसरे के नेत्र चेहरा आदि देख के उनके चित्त वृत्ति में संयम करता है तो उसको उस चित्त का साक्षात होता है चित्त वृत्ति के संयम करता है तो फिर कहते उसको उस चित्त का साक्षात होता है चित्त की वृत्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके मन की बातें योगी को सभी मालूम हो जाती है। वृत्ति मात्र के संयम से वृत्तियां का ही ज्ञान होता है परते मात्र के संयम से यह नहीं जान सकता कि चित्त किस विषय में स्थित है अर्थात दूसरे का चित्त राग द्वेष से युक्त है अथवा रहत है यही ज्ञान होता है। और राग द्वेष का विषय ज्ञान नहीं होता कि किस विषय में राग तथा किस विषय में द्वेष है, इसी विषय को अगले सूत्र में कहते हैं। ना चा तत्सालंबनम, अलंबनम तस्या विषयी भूत्वात्, किंतु यह ज्ञान अलंबन आश्रय सहित नहीं होता क्योंकि योगी के चित्त के विषय नहीं है। पहले सूत्र में कहा है कि अन्य पुरुष की चित्त वृत्ति में संयम द्वारा दूसरे के चित्त की वृत्तियां का ही राग द्वेष से मुक्त है या युक्त है, यही ज्ञान होता है। उनके विषय का ज्ञान नहीं होता कि अमुक विषय में आसक्त है अथवा किस विषय में राग है एवं किस विषय में द्वेष है, क्योंकि ये उस संयम के विषय में ना थे। संयम से उसी का साक्षात होता है जो उसका विषय है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं। अब अनसिद्धि का वर्णन करते हैं। काय रूप संयम संयमात, अपने शरीर के रूप में संयम करने से, तद ग्राहज शक्ति स्तंभे, उसकी रूप की ग्राहज शक्ति रुक जाने पर चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग न होने पर अंतर ध्यान, योगी को अंतर ध्यान प्राप्त होता है। शरीर रूप में संयम करने से रूप की ग्राह शक्ति रुक जाती है, इससे दूसरे की आंखों के प्रकाश का संयोग न होने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। नेत्र ग्रहण शक्ति एवं रूप ग्राह्य शक्ति है, इन दोनों के परस्पर संबंध से देखना होता है। यदि इन दोनों ग्रहण शक्ति ग्राह्य शक्ति में से एक शक्ति रुक जाए तो देखने का काम बंद हो जाता है। योगी संयम द्वारा अपने शरीर को ग्राह्य शक्ति को रोक देता है, इस कारण अन्य पुरुष के नेत्र की ग्रहण शक्ति होते हुए भी योगी के शरीर को नहीं देख सकते, यही योगी का अंतर ध्यान छिप जाना है। इसी तरह शब्द स्पर्श रस और उनकी ग्राहज शक्तियों को रोकने से कान त्वचा जिह्वा नासिका इंद्रियों के ज्ञान का शब्द आदकों के साथ संबंध न होने से उनका ज्ञान नहीं होता। जैसे योगी ने शब्द में संयम कर लिया है तो उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता, यदि स्पर्श में संयम कर लिया है तो योगी के शरीर को कोई छू नहीं सकता। इसी तरह अनसिद्धियां भी समझनी चाहिए। सो परकर्मम उपकर्म, सो उपकर्मम उपक्रम सहित तीव्र वेग वाले अथवा आरंभ सहित चा निरुपकर्म और उपक्रम रहत मंद वेग वाले अथवा आरंभ रहत कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं तथा संयमात, उनमें संयम करने से उपरांत ज्ञानम मृत्यु का ज्ञान होता है और अरिष्ट अरिष्टे पया वा अथवा उल्टे उल्टे चिन्हों से, रिष्टे प्यावा उल्टे चिन्हों से। सूत्र का भाग उपक्रम सहत तीव्र वेग वाले, उपक्रम रहत मंद वेग वाले, दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा अरिष्टो से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। अर्थ, मनुष्य की आयु पूर्व जन्म के अनुसार होती कर्म के अनुसार होती है। वह कर्म दो प्रकार के होते हैं, पहले सो उपक्रम अर्थात जिसका फल प्रारंभ हो चुका है, बहुत सा फल हो गया और अभी बाकी है, तथा तीव्र वेग से अपना कार्य करते हुए आयु को समाप्त करते हैं। दूसरे निरुपक्रम जिनके फल भोगने का काम अभी आरंभ नहीं हुआ। यह मंद वेग वाले हैं, जिस तरह जल में भीगे हुए कपड़े को धूप में सुखाने से जल्दी सूख जाता है और उसी भीगे कपड़े को लपेट कर छाया में सुखाने से देर से सूखता है। इस तरह तीव्र वेग वाले एवं मंद वेग वाले दो प्रकार के कर्मों में संयम करके योगी इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन से कर्म कितना फल कर चुके हैं एवं कितना शेष है तथा कितने समय में इनका फल समाप्त हो जाएगा। तब उसे अपनी आयु का अर्थात मृत्यु का ज्ञान हो जाता है अथवा अरिष्टों से बुरे चिन्हों से जो मृत्यु के सूचक हैं अपनी आयु का ज्ञान हो जाता है। वे अरिष्ट तीन प्रकार के हैं, अध्यात्मक अधि भौतिक अधि दैवक। अध्यात्मक अरिष्ट वह हैं जैसे कानों के छिद्र को उंगली से बंद करने से जो प्राणवायु का शब्द सुन पड़ता है उसका सुनाई ना पड़ना। अधि भौतिक अरिष्ट वह है जैसे जिमदूतों एवं मरे हुए पुरुषों का अकस्मात देखना और वह मालूम होना मानो सामने खड़े हैं। तीसरा अधि दैवक वह है कि अकस्मात स्वर्ग व सिद्धों का देखना या आकाश के नक्षत्र तारागण का व्यति क्रम देखना। इन रिश्तों द्वारा साधारण मनुष्यों को भी आयु ज्ञान हो जाता है, संयम से योगियों को मृत्यु ज्ञान होता है। चित शुद्धि से हुई सिद्धियां को कहते हैं। चित की शुद्धि नाल केड़ियां चीजां जड़ियां प्राप्त हुंदियां हन। मैत्री आदि शु बलाने, मैत्री आदि से संयम करने से मैत्री आदि बल प्राप्त होते हैं। समाधि पाद के 33वें सूत्र में कही हुई मैत्री करणा मुदता, इनके संयम करने से मित्र आदि बल योगी को प्राप्त होता है। अर्थात सूफी मनुष्यों में मित्रता का संयम करने से उन सब का मित्र बनकर उनको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। दुखी मनुष्यों में करुणा की भावना का संयम करने से करुणा बल प्राप्त होता है, जिससे हर प्राणधारी के दुख का निवारण कर सकता है। पुण्य आत्मा मनुष्यों से मुदता की भावना का संयम करने से आनंद का बल प्राप्त हो जाता है, जिससे सभी प्राणियों को आनंद देने की शक्ति हो जाती है। अपेक्षा उदासीनता में संयम का अभाव होने से उदासीनता का कोई बल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह अभावात्मक पदार्थ है। बलेषु अस्ति बलादीनि, हाथी आदि के बलों में संयम करने से उन्हीं के समान बल प्राप्त होता है। बलेषु बलों से संयम करने से अस्ति बल आदीनि, हाथी आदि से बल प्राप्त होते हैं। हाथी आदि बलों में संयम करने से उन्हीं के समान बल प्राप्त होता है। अर्थ यदि योगी हाथी के बल में संयम करता है तो हाथी के समान बल प्राप्त करता है, यदि गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ के समान बल प्राप्त होता है, यदि पवन के बल साथ संयम करता है तो पवन के समान बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिसके बल के साथ संयम करेगा उसी के बल के समान बल की सिद्धि होती है। प्रवृत्ति आलोक न्यासात, प्रवृत्ति के प्रकाश डालने से सूक्ष्म इंद्रियातीत बवहत व्यवधान वाली आड़ से रहने वाली बेपरकृष्ट दूर की वस्तु का ज्ञानम ज्ञान होता है। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म जो इंद्रियां से नहीं जानी जाए व्यवधान वाली आड़ में रहने वाली बेपरकृष्ट दूर की वस्तु ज्ञान होता है। इंद्रियों से तीन प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। एक तो अत्यंत सूक्ष्म होती है, जैसे परमाणु, महतत्व, आत्मा, प्रकृति आदि। दूसरी जो आड़ में छुपी है, जैसे जमीन में गड्ढा हुआ धन, समुद्र में रतन, खान में सोना आदि। तीसरी बेपरकृष्ट अर्थात जो अन्य देश में हो, जैसे पहाड़ पर पड़ी हो। इनमें किसी वस्तु को जानने के लिए योगी तब ज्योतिषमती प्रवृत्ति के प्रकाश में संयम करता है तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से काटादि प्रत्यक्ष दिखते हैं, इसी पर सूक्ष्म बवहत बेपरकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का 14 भुवन ज्ञान होता है। जद भी भुवनों का वर्णन प्राणों में बताया है, किंतु यही प्रसंग बच संक्षिप्त देते हैं। पृथ्वी के नीचे अविची नरक से लेकर सुमेर की पीठ तक, भूलोक तथा मेरु की पीठ से ध्रुव ग्रह तक, 76 तारागणों से युक्त अंतरिक्ष लोक, इसी को कुवा लोक कहते हैं। इससे ऊपर स्वर्ग लोक है, इसी को महेंद्र लोक कहते हैं। इस लोक की 5 श्रेणी है, चौथा प्रजापति का महालोक, इससे आगे यन लोक तपालोक है। इस प्रकार है जी, पोहालोक, पूलोक, पोवालोक, स्वयालोक, महालोक, यन लोक, तपलोक, सातलोक। 7 ऊपर के हैं। पृथ्वी के नीचे 14 लोक और हैं। सबसे नीचा अविची नर्क, उसके ऊपर मिट्टी कंकण से पूर्त महाकाल है। उसके ऊपर अम्बरीश जल से भरा है। उसके ऊपर रौरव नर्क है, जो अग्नि से पूर्त है। पुनः ऊपर महारौरव है, जो वायु के प्रचंड वेगों से व्याप्त है। ऊपर महासूत्र, जो आकाश वत अर्थात खाली है। ऊपर अंधता मिश्र अंधकार ज्योत है। प्राणों में थाई नर्क कहे हैं। अस्तु, अपने कर्मानुसार प्राणी यातना भोगने के लिए वहां जन्म पाते हैं। इनके नीचे 7 पताल हैं, जैसे महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल। 8वीं पृथ्वी है। इसके मध्य भाग में सुमेरु पर्वतराज है। पृथ्वी 7 दीप वाली है। सुमेरु की 4 चोटी चांदी, वैदूरज, स्फटिक, सुवर्ण से दीप्तमान चारों दिशाओं में स्थित है। वहां आकाश की 26 मणियों आदि के अनुसार वैसे ही रंग की शोभायमान दिखती है। सुमेरु के ऊपर दक्षिण भाग में जम्बू वृक्ष बहुत बड़े आकार वाला है। इसी से इस लोक का नाम जम्बू द्वीप है। सुमेरु के चारों तरफ सूरज भ्रमण करता है। यहाँ प्रकाश दिखता है, वहाँ दिन, यहाँ सूर्य नहीं दिखता, वहाँ रात होती है। सुमेरु के ऊपर में नील श्वेत श्रृंगवान पर्वत है, जिसका विस्तार 2000 वर्ग योजन है। इनसे घिरे हुए 3 महादेश रमणिक किरणमय उत्तर कुरु हैं, जो हर एक 9000 योजन वाला है। सुमेरु के दक्षिण में निषिद्ध हेमकुंड हिमशैल 2000 योजन विस्तार के हैं। उनके अंदर 9000 योजन विस्तार वाले 3 महादेश हरिवरण सिंह पुरुष भारत हैं। सुमेरु के पूर्व की सीमा पद्राशुभ और मल्यवान से घिरी है। पश्चिम दिशा केतुमाल एवं कंदमादन से घिरी है। मध्य में इलावृत महादेश है। इस प्रकार 100000 वर्ग योजन विस्तार का जम्बू द्वीप है। यह अपने द्वैगुण विस्तार वाले किशार समुद्र से कंकड़ की तरह चारों ओर से घिरा हुआ है। इसी तरह द्वैगुण विस्तार वाले शक, कुशा, क्रौंच, शालमल, गोमेद, पुष्कर द्वीप हैं, जो 7 समुद्रों से बेष्टित हैं। समुद्रों का जल क्रम से इक्षु, रस, शराब, मक्खन, दही और मांड दूध के समान है। जे सुंदर परतों से सुभायमान है। 50 कोटि योजन का पृथ्वी मंडल ब्रह्मांड के अंतर्गत खद्योत के समान सूक्ष्म अणु के समान आकार वाला है। पाताल समुन्दर पर्वतों में असुर गंधर्व किन्नर किंग पुरख यक्ष राक्ष भूत प्रेत पिशाच ते अपस्मारक अपछरा और बाहज राक्ष विनायक आदि राजसी तामसी प्रकृति वाले प्राणी रहते हैं। द्वीपों में पुण्य आत्मा पुरुष देवता रहते हैं। सुमेर देवों की उद्यान भूमि है। वहां मिश्रघन नंदन चैत्रथ सुमानस चार वन हैं। सुधर्मा देवों की सभा तथा सुदर्शन वैजयंती राज महल है। ये सब भूलोक है। इसे ऊपर अंतरिक्ष आदि है। इन समस्त भुवनों का ज्ञान सूर्य के संयम द्वारा साक्षात्कार होने पर होता है। यह सिद्धि पूर्ण अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। वाचस्पति मिश्र ने सूरज द्वार को सोमना नाड़ी के संयम करके कुंडलनी के जागृत होने पर सभी का अनुभव हो जाता है, ये बतलाया है। चंद्रे चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञानम तारियों के व्यूह का नक्षत्रों स्थान विशेष का ज्ञान होता है। चंद्रमा में संयम करने से सब नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान होता है। अर्थ जहां यह संदेह होता है कि सूर्य के संयम द्वारा जब 14 भुवन ज्ञान होता है फिर चंद्र संयम क्यों वर्णन किया, इसका उत्तर ये है कि सूर्य के प्रकाश में तारागणों का प्रकाश मलिन होने से स्पष्ट मालूम नहीं होता, इसलिए चंद्र संयम से ही नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान होता है। ज्योतिष गणना अनुसार चंद्रमा शीघ्रगामी होने से अपने चंद्र मास में 12 राशियों पर चक्कर लगाता है। एक वर्ष में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है। प्रत्येक नक्षत्र गण की राशि के साथ आकर्षण विकर्षण शक्ति चंद्रमा की होने से तारा गणों की स्थिति का ज्ञान चंद्रमा के संयम से ही होता है। ध्रुवे तदगत ज्ञानम ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा सबसे प्रधान व स्थिर है। सब तारों की गति का उसमें संबंध है। अतः ध्रुव का संयम करने से तारों की गति अर्थात कौन कितने समय में किस राशि तथा नक्षत्र पर जाएगा इसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। और नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की स्थिति का ज्ञान होता है। नाभि चक्र शरीर के मध्य में पिंडाकार 16 सिर वाला मांस का गोला है जो सब नाड़ियों का केंद्र है। शरीर की समस्त नाड़ियों का उससे संबंध है। उसमें संयम करने से वात पित्त कफ तीनों दोष एवं त्वचा रक्त मांस नाड़ी हड्डी चर्बी वीर्य सातों तत्वों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे कंठकूप में संयम करने से क्षुप्त पिपासा निवृत्ति शुदा और पिपासा की निवृत्ति होती है। कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास दूर होती है। जीव के नीचे एक नस तंतु के समान है, उसके नीचे कंठ है। उसके नीचे का बड़ा कंठकूप कहलाता है। उसका प्राणवायु से स्पर्श होना ही कुशुदा त्रिषा का कारण है। अर्थात कंठकूप से प्राणवायु के टकराने से भूख प्यास लगती है। उसमें संयम करने से प्राणवायु का स्पर्श ना होने से भूख प्यास की बाधा नष्ट हो जाती है। पूर्व नाड़िया स्थैर्यम पूर्व नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। वृक्ष स्थल में कंठकूप के नीचे कश्यप के आकार के समान नाड़ी है जिसे कूर्मा नाड़ी कहते हैं। उसने संयम करने से योगी सर्प तथा गुह की तरह ज्ञान शून्य जड़ अवस्था को प्राप्त करता है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्धि दर्शन, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। मूर्ध मस्तक शेर कपाल के अंदर छिद्र है, उसके प्रकाशमान ज्योति है, उसको मूर्छा ज्योति ब्रह्म रंध्र और सोहना नाड़ी भी कहते हैं। उनमें संयम करने से द्यो और पृथ्वी लोक के विचरने वाले दिव्य पुरुषों के जो साधारण मनुखों को नहीं दिखते हैं दर्शन होते हैं। योगी ध्यान अवस्था में उससे बातचीत करता है। प्राति भादवा सर्वम अथवा परतव ज्ञान से सर्व ज्ञाता होता है। परतव ज्ञान अपूर्व बुद्धि से उत्पन्न तत्व विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है, इसी को तारक कहते हैं। इसकी उत्पत्ति होने पर योगी को बिना संयम के ही संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इसे पूर्व जो जो संयम कहे हैं और उनसे जो जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं एवं जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है वह सभी प्रकार का ज्ञान परतव ज्ञान से ही हो जाता है। परतव ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अंदर से प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर मनुख को सभी वस्तुएं दिखने लगती है, उसी प्रकार परतव ज्ञान से योगी सब कुछ जान लेता है। हृदय चित्त संबत, हृदय संयम द्वारा चित्त का ज्ञान होता है। हृदय में अधोमुख वाला सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, उसके अंदर अंतःकरण चित्त का स्थान है। इसमें संयम करने से योगी को अपने चित्त की वासनाओं तथा दूसरे चित्त की स्थित और राग आदि का ज्ञान होता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने पर विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, यह बताते हैं। प्रतिपादवा सर्वम, प्रतिपादवा अथवा प्रतिवा ज्ञान से सर्व सब कुछ जाना जाता है। हृदय चित्त संबत सत्व पुरुषो चेत और पुरुष अन्यंत असंकीर्ण्यों जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, इन दोनों की प्रत्यय अवशेषा प्रतीतियों का अभेद भोगा भोग है। उनसे परार्थ प्रतीति से अन स्वार्थ संयमात भिन्न जो स्वार्थ प्रीति पौरुषे परते है, उनसे संयम करने से पुरुष ज्ञान, पुरुष का ज्ञान होता है अर्थात पुरुष विशेष प्रज्ञा उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि और पुरुष जो दोनों परस्पर भिन्न हैं, इन दोनों का भेद ज्ञान भोग है। उनसे ये परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। बुद्धि या चित्त प्रणामशील जड़ भोग एवं चंचल है, पुरुष अप्रणामी चेतन और भोगता एवं असंग है। ये दोनों परस्पर भिन्न हैं, इनका कोई मेल नहीं है, तो भी जड़ चित्त में चेतन पुरुष से प्रतिबिंबित होकर जो सुख दुख आदि वृत्तियों का उत्पन्न होना है वह वृत्ति अवशेष अभिन्न मिश्रित है, क्योंकि इससे चित्त के धर्म सुख दुख और मोह आदि में प्रतिबिंबित चेतन पुरुष आत्मा में और अध्या आरोपित होते हैं। यह भेद प्रतीत ही प्रतीति ही भोग है, अर्थात सुख दुख का भोग चित्त को होता है। पुरुष अज्ञान से अपने को सुखी दुखी मानता है, ये मानना ही भोग है। जैसे स्वच्छ जल की हलूरों में चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ मालूम होता है, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता है। उसी प्रकार पूर्वचित का प्रणाम होने के कारण वास्तव में चित में चित ही में होता है, परंतु प्रतिबिंब से निर्विकार आत्मा में सुख दुख आदुकों का आरोप रूप भोग है। आत्मा अरूपत भोग वाला होने से भोगता कहलाता है। ऐसा चित्त का परिणाम परते स्वरूप भोग जड़ होने से परार्थ है एवं भोग है। इस परार्थ जड़ भोग से भिन्न आत्मा का प्रतिबिंब रूप परते है, उसी को स्वार्थ कहते हैं। इस स्वार्थ परते में संयम करने से आत्मज्ञान होता है, अर्थात योगी को आत्म स्वरूप का साक्षात होता है। तथा स्वार्थ संयम अभ्यास से प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। उस स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। तथा मैंने उस स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। प्रातिभ श्रवण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। उस वार संयम से प्रातिभ श्रवण वेदना ज्ञान आदर्श आस्वाद वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी पाद में 33वें सूत्र में प्रातिभ ज्ञान बताया है। ऐसे सूक्ष्म छिपी हुई देशों में स्थित एवं उत्पेक वर्तमान वस्तुओं की जानकारी होती है। श्रावण ऐसे दिव्य शब्द सुना जाता है और ते वेदना दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। ते आदर्श दिव्य रूप का दर्शन होता है। आस्वाद दिव्य रस का अनुभव होता है। वार्ता दिव्य गंध का अनुभव होता है। ते परातिभ ये इसे पाद विच दस्या ते उपरोक्त छे सिद्धियां गरीत्री विषयक समाधि के साधन में पुरुष ज्ञान से पूर्व ही प्राप्त होती है। केवल इन सिद्धियों को पाकर योगी को विश्राम न करना चाहिए, बल्कि पुरुष ज्ञान की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ते वे ऊपर जो छे सिद्धियां समाधो उपसर्गा समाधि पुरुष दर्शन में विघ्न है। व्युत्थान सिद्धिया व्युत्थान में सिद्धियां हैं। वे ऊपर छे सिद्धियां समाधि पुरुष दर्शन में विघ्न है, व्युत्थान में सिद्धियां हैं। उपरोक्त छे सिद्धियां समाधि सिद्धि पुरुष ज्ञान प्राप्त करने में विघ्न है, व्युत्थान में सिद्धियां हैं। पहले सूत्र में कही हुई छह सिद्धियों समाधि और प्राप्ति अर्थात पुरुष ज्ञान करने में विघ्न के समान है, क्योंकि इन सिद्धियों में हर्ष गौरव प्राप्त होने से साधु को शिथिलता आ जाने की संभावना रहती है। अतः परमानंद मोक्ष के इच्छुक योगी इन सिद्धियों का त्याग कर देते हैं, इनके फंदे में नहीं पड़ते। ये व्युत्थान अवस्था में सिद्धि रूप होती है। जैसे दरिद्र मनुष्य थोड़ा द्रव पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, इसी प्रकार भिक्षुक चित्त वाले को पुरुष ज्ञान से पहले होने वाली सिद्धियां हर्षद होती है। अब विभिन्न संयमों से विभिन्न प्रकार की क्रिया शक्तियों की प्राप्ति बताते हैं।